ಗೌರಚಂದ್ರಾಯ ರಾಧಿಕಾಯೈ ತದಾಲಯೈ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಾಯ ತದ್ಭಕ್ತಾಯ ನಮೋ. ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಹೀನಾಪರಾಧಲಕ್ಷ್ಯೈ ಚೇತ್ತಾಶ್ರು ಕಾಮಾದಿತರಂಗಮಧ್ಯೈ ಕೃಪಾಮಯೀ ತ್ವಾಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪನ್ನಾ ವೃಂದೇ ನಮಸ್ತೆ ಚರಣಾನಿ. ಯಂ ಪ್ರವ್ರಜಂತಮನುಪೇತಮಪೇತಕೃತ್ಯಂ ದ್ವೈಪಾಯನೋ ವಿರಹಕಾತರಯಾ ಜುಹಾವ ಪುತ್ರೇತಿ ತನ್ಮಯತಯಾ ತರ್ವೋಭಿನೇದು ತಂ ಸರ್ವಭೂತಹೃದಯಂ ಮುನಿಮಾನತು. ತವೈವಾಸ್ಮಿ ತವೈವಾಸ್ಮಿ ನ ಜೀವಾಮಿ ತ್ವಯಾ ವಿನಾ ಇತಿ ವಿಗ್ರಹ ರಾಧೇ ತ್ವಂ ನಯ ಮಾಂ ಚರಣಂ. ಭಜಾಮಿ ರಾಧಾಂ ಅರವಿಂದ ನೇತ್ರಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ರಾಧಾಂ ಅನುಸ್ಮಿತಾಶ್ಯಂ ವದಾಮಿ ರಾಧಾಂ ಕರುಣಾಭರದ್ರಂ ತತೋ ಮಮ ನಾಸ್ತಿ ಗತಿರ್ನ ಕಾಪಿ. ಹನೆ ವಹನನೆ ಮಥಲೋಪಲೇಪ ಕ್ರಿಂಖಂ ಖನಾರ್ಬೌದಿತೋ ಖನಮರ್ಜನ ಗಾಯಂತಿ ಚೈನಮನುರಕ್ತ ಧಿಯೋ ಅಶ್ರುಕಂಠ ಧನ್ಯ ಬ್ರಜಸ್ತ್ರಿಯ ಗುರು ಕ್ರಮಚಿತ್ತ ಜಾನ. हमने अश्रुकंठ इत्यादि तक बतलाया था. कल उन्होंने बतलाया था कि गोपियां चावल कूटने में, गृहलेपन करने में, बच्चों को सुलाने में भगवान नाम कीर्तन करती हैं और कृष्ण में आविष्ट हो जाती हैं. उनमें आविष्ट अपने उन क्रियाओं में, कर्मों में नहीं होती हैं जिसमें इसमें बतलाया गया है. दोहने वहनने मथलो पले पप्रंखन खनार भूदितो उखन मार्जना. तो इन सब गृह कार्यों में आसक्त नहीं है, कृष्ण के स्मरण में अत्यंत गुणगान करने में अनुरक्त है, उनकी बुद्धि है. किंतु दूसरा भी एक अर्थ हो सकता है, वो क्या, जिस प्रकार से कृष्ण नाम के करने में अनुरक्त हैं, उसी प्रकार से उन गृह कार्यों में भी अनुरक्त हैं. दोनों में अनुरक्त है. अनुरक्त धियो किसमें, अनुरक्त धी हो करके गौओं का दोहन करना, कूटना, गृह का सम्मार्जन, बच्चों को थपथपाकी देना, झूलन इत्यादि करना, उनमें अनाशक्त करके नहीं करती हैं, बल्कि उसमें भी क्या होता है, उनमें भी अनुरक्त, इसमें भी अनुरक्त, उसमें भी अनुरक्त. कैसे, किस लिए होता, कैसे होता, एक आदमी का चित्त दोनों कामों में अनुरक्त नहीं हो सकता. किंतु उरुक्रम उनके चित्त में है, इसलिए उरुक्रम का प्रभाव होने से दोनों कामों में भी संभव हो सकता है, असंभव भी संभव उनके लिए. एनीथिंग विच कैनॉट बी डन बाय द पावर ऑफ कृष्ण इट मे बी उरुक्रम, बिकॉज इज उरुक्रम सो इट इज पॉसिबल दैट सो मच अनुरक्त इन हाउस हाउस वर्क्स एंड ऑल्सो इन कृष्ण बोथ बिकॉज कृष्ण इज सो पावरफुल जोगमा इज देयर सो एवरी कैन थिंग कैन बी डन by Krishna, because he is so powerful. So if Krishna comes in their heart, the power of Krishna comes in the heart of gopis, and this asambhav becomes sambhav. This impossible becomes possible. Kyon aisa karti hain? Kyon? गृह का सम्मार्जन करती हैं कृष्ण का चिंतन करते करते क्यों कृष्ण हमारे आंगन में आएंगे कृष्ण उनके आंगन में आएंगे कि नहीं जरूर आएंगे इसलिए मार्जन करके रखने चाहिए कृष्ण के लिए जो देख करके खुश हो जाए गम इत्यादि गेहूं इत्यादि जो कूटती हैं किस लिए उसी से मनोहर लड्डू और ये सब चीजें बनेंगी इसलिए कृष्ण खाएंगे इसलिए बड़े प्रेम के साथ में उसको करती हैं बनाती हैं बड़ी सावधानी अनुरक्त होकर के कृष्ण इससे संतुष्ट उनको अपने बेटे नहीं है संतान नहीं है क्यों यह रस्त्र की दृष्टि से रसा दुष्ट हो जाएगा रसाभास रसाभासी नहीं बल्कि रस दुष्ट हो जाएगा कृष्ण कभी भी किसी संतान युक्त गोपियों से उस प्रकार का भाव नहीं रखते उनके प्रति आदर का भाव रखते हैं और इनका ये कृष्ण के प्रति जो भावना है नष्ट हो जाएगी इसलिए जिन पुत्रवती या संतानवती गोपियां हैं उनसे कृष्ण का उन कृष्ण के प्रति अनुरक्त है ठीक है किंतु उनकी प्रेयसियों में जो कि रासलीला इत्यादि में सम्मिलित है उसमें नहीं जा सकते ब्रज की वृद्ध नारियां बालिका नारियां सभी कृष्ण पर अनुरक्त है किंतु कृष्ण का व्यवहार उनके प्रति प्रियतमा के जैसा नहीं होगा रास लीला में वो सब सम्मत नहीं सम्मिलित तो यहाँ पर प्रेंखना भी उदित हो वो झूले पर बच्चों को शयन करा रही हैं सब कामों में इसी तरह से अनुरक्त रह करके ये कृष्ण के सुख के लिए यदि उस समय बच्चे नहीं रोते होंगे तो हो सकता है जब वो बैठ जाएं तो हम भी उनके साथ में बैठ करके झूल लेंगे ये सब भावनाएं सब कामों में कृष्ण की सेवा कृष्ण बच्चा को हटा बच्चा नहीं रहेगा सब समय रहेगा उस समय जब रहेंगे जोग माया की क्रिया से वो बच्चे न जाने कहां चले जाएंगे लो लाइट की कोई व्यवस्था नहीं रही है सब लोग सुन ही रहे हैं इसी तरह से वो जितनी भी क्रियाएं हैं माल्य ग्रंथन से लेकर के जितनी भी क्रियाएं हैं सभी क्रियाएं कृष्ण की प्रीति के लिए हैं तो उसमें यदि उनकी प्रीति नहीं रही तो फिर अनुरक्त कहाँ रही इसलिए उस समय में कृष्ण के बीरा में जब रहती हैं घर में जबकि कृष्ण गोचारण इत्यादि के लिए चले जाते तो अनुरक्त होकर के माल्य ग्रंथन से आरम्भ कर मनोहर लड्डू खीर पुली शक्सुली इत्यादि बनाने में और सब कामों में एकदम अनुरक्त होकर के कृष्ण का स्मरण भी करती हैं और उन वस्तुओं को बनाने से ही कृष्ण में और उनकी चिंता लग जाती है और भी आविष्ट हो जाए ये कौन खाएगा और कल कैसे खाए थे इसकी स्मृति आ जाए श्रीमती राधिका ने जो मनोहर लड्डू बनाया तो कल उनको जब यशोदा जी प्रवेशन कर रही हैं या रोहिणी मैया प्रवेशन कर रही हैं और श्रीमती जी बगल से झांक करके देख रही हैं उन्होंने नाक मुख सिकोलिया माने बहुत कड़वा है और श्रीदाम के थाल में दे दिया श्रीदाम देकर के इतना स्वादिष्ट किस लिए दिया कैसे बनाती उनको चखने के लिए कोई भी अच्छी चीज कृष्ण अपने नहीं चख पूरा लेकर के उसे दे करके सबको बांट देते हैं उस समय में श्रीमती राधिका जी उनको देख करके विरक्ति देख करके कुछ चिंतित हो गई अच्छा नहीं बना किंतु पीछे से जबकि सुना तो बड़ी प्रसन्न हो गए। इसलिए अनुरक्ता दोनों में लगाओ, पहले में साधारण लोगों की शिक्षा के लिए उसमें अनासक्त होकर के रहे, किंतु कृष्ण का यह विषय है उसमें यदि उदासीन रहेंगे तो यह भक्ति नहीं है। वो क्या है ना, अनुकूल कृष्ण जिसे प्रसन्न होते हैं उनमें मायावादियों की तरफ में विषय जान करके उनमें उदासीन रहना यह भक्ति का कार्य नहीं है। अनासक्तस्य विषयान यथा उपजुंजत कृष्ण संबंधे बंध निर्बंधे दो है, एक फल्गु बैराग और एक युक्त बैराग। फल्गु बैराग क्या है? फल्गु बैराग, फल्गु बैराग किसको होता है? कृष्ण का, कृष्ण के भोग की वस्तुओं में अनाशक्त होना ये फल्गु बैराग। अरे भाई संस्कृत में बतलाओ ना, वो सब तो याद नहीं। अनाशक्तस्य विषयान यथा हाँ फल्गु वैराग्य मिति, वो फल्गु वैराग्य है। यदि ठाकुर जी के भोग रंधन में यदि अनाशक्ति हुई, ये कर्म है, ये कर्म करने के लिए तो घर में भी करते थे, तो ये फल्गु वैराग्य होगा, भजन नष्ट हो जाए। किसी भी कृष्ण सेवा की वस्तु है उसमें अनुराग होना चाहिए, और ये तो भक्ति हुई, और उन वस्तुओं में आसक्त हो जाना सांसारिक वस्तुओं में ये ठीक नहीं, ये युक्त वैराग्य के साथ में भजन करना चाहिए। गोपियों का जो कुछ भी है वो अनुराग की अंतिम सीढ़ी पर है, कोई भी कार्य है उनका कृष्ण प्रीति के लिए करती हैं अनुराग। जिन लोगों की भगवान में आसक्ति ऐसी होती है वे सर्वदा नाम उच्चारण करके हरि नाम का गान किया करते हैं। जिन लोगों की ऐसी रुचि होगी वे भगवान के नामों का, भगवान के रूप के गानों का, उनकी करुणा का गान, उनके माधुर्य का गान बड़े प्रेम के साथ में करेंगे, लोगों को सुनाने के लिए नहीं। अभी हम लोगों का ऐसा नहीं है, लोगों को सुनाने के लिए अधिकांश लोगों को खुश कर। जब ये अंतर्मुखी हो जाएगा तो लोग भी सुनेंगे और भगवान भी सुनेंगे, इसलिए भगवान को सुनाने के लिए ऐसा करना चाहिए। अपने कीर्तन या प्रवचन से किसी प्रकार का लोभ न रहे, ये यह व्यक्ति हमको सुन करके ये देगा तो हो गया भजन और नाम कीर्तन, कभी भी नहीं। वस्तुतः इससे कृष्ण प्रसन्न होंगे इसी की अपेक्षा रह करके वे उनमें कर्मों में भी आसक्ति के साथ में बड़ी प्रीति के साथ में लगती हैं, और भगवान का नाम कीर्तन भी सब में करते हैं। यदि कहो उनकी बुद्धि भिन्न भिन्न कामों में एक साथ में कैसे लगती है, और भगवान के गुणानुवाद में भी कैसे लगती है, रसोई कर रही हैं, झाड़ू दे रही हैं, चक्की चला रही हैं, दूध काट रही हैं, रोटी बना रही हैं, दिन भर तो काम में व्यस्त हैं, तो उनका चित्त कृष्ण में कैसे लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ, इसी के लिए वो बतला रहे हैं सनातन गोस्वामी। उरुक्रम है कृष्ण, उरुक्रम है। उरुक्रम माने क्या? एक तो उरुक्रम का अर्थ बतला है बड़े वेग से कृष्ण के चरणों में उनका चित्त लग जाता है, इसलिए उरुक्रम गोपियों के लिए आया, और यहां पर आया कृष्ण उरुक्रम है क्या, अघटन घटक घटन पटेशी शक्ति वाले हैं, जो नहीं हो सकता है उसको भी करने वाले हैं, इसलिए उनके चिंतन करने से भक्तों में भी ऐसी ही अचिंत शक्ति का की स्फूर्ति होती है। जैसे नारद जी एक ही साथ में हजारों रूप धारण करके कृष्ण की हजारों लीलाओं में, नंद महाराज कितने हैं, करोड़ों, एक नहीं करोड़ों ब्रह्मांडों में करोड़ों कृष्णों के साथ में, कृष्ण के साथ में उनकी सेवा कर रहे हैं, जसोदा मैया इत्यादि जितने भी कृष्ण के परिकर हैं, वे अपना प्रभाव दिखलाते नहीं, ऐश्वर्य दिखलाते नहीं, क्यों, लीला नष्ट हो जाएगी, दिखलाते हैं, किंतु जोग माया उनका प्रभाव कभी 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 दिखला देती है। इसलिए पुरुक्रम उनके हृदय में रहने के वजह से, उनकी शक्ति उनमें चली जाने से, आने से, वे भी एक साथ में सभी कामों को करते हुए भी कृष्ण के प्रति अनुराग, उन कामों में भी अनुराग रख सकते हैं। हम एक काम को करते हैं, चित्त को नहीं लगाएंगे, रसोई कर रहे हैं और उस समय कृष्ण नाम का कीर्तन में मत हो जाएंगे तो क्या होगा, परमान्न जल जाएगा। यदि नहीं परमान्न चलाए हैं तो क्या होगा, वो जल जाएगा, गंध उसमें आ जाएगा। रोटी सेक रहे हैं और रोटी सेक रहे के समय में यदि हाथ उठाकर हरी बोल करने लगे तो क्या होगा, रोटी जल जाएगी, कोई भी काम ठीक नहीं होगा। तो गोपियों का ऐसा कैसे होता है, क्योंकि उरुक्रम उनके, हमारे हृदय में अभी उरुक्रम का प्रभाव नहीं है, उनके हृदय में उरुक्रम का प्रभाव है, इसलिए ऐसा होता है। भवातिया की कृष्णगत चित्त जो गोप सुंदरियां हैं, स्वभावतः सर्वत्र निरपेक्ष रहने पर भी उनकी समस्त कर्म अभ्यास के वस्त्र स्वयं हो जाते हैं और कृष्ण की शक्ति से सभी काम एक साथ, उधर भी अनुरक्ति इधर भी अनुरक्ति, कृष्ण के किसी भी सेवा के लिए जो कुछ काम कर रहे हैं उनमें उनकी कभी भी अनासक्ति नहीं हो सकती, संभव है। गोदोहन कर रही है कौन, यशोदा मैया, क्यों कर रही, मक्खन खट्टा हो सकता है, कृष्ण को अच्छा नहीं रुचता है, दूसरों को दे देता है, इसलिए मैं पद्म गंधा और दूसरी गायों को दोहन करके अपने साथ ही साथ और करके दही बना करके उसका मक्खन कृष्ण को खिलाता हूं। तो यशोदा मैया अनासक्त होकर के कर रही, कृष्ण के लिए कपड़े चाहिए, अनासक्त होकर के यशोदा मैया बना रही, ये उल्टा सीधा हो जाए। इसलिए घर के जितने भी काम, ये कृष्ण के भजन करने का एक तरीका है। यशोदा मैया कृष्ण को प्यार करती हैं, तो दूसरों से कटु बोलती हैं कि नहीं, कड़ी बात, क्योंकि कृष्ण में अनुराग है, इसलिए सबसे कड़ी बात बोलेंगी, सबसे झगड़ा लड़ाई करेंगे कि नहीं। हम देखते हैं कि बहुत से लोग भक्ति के नाम पर दूसरों से कटु बात करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, घर का, घर की शांति भी दूर कर देते हैं, जहां रहते हैं वहीं पर अशांति पैदा करते हैं, ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, मधुर व्यवहार वैष्णव हो जाए। यहां पर गान की प्रधानता दी गई है, कीर्तन की प्रधानता दी गई है, एवं तो गानस्य एव प्राधान्यम्, गान का प्रधानता है, क्यों, जैसा गान होगा वैसी ही चिंता होगी, वैसा ही स्मरण होगा, कीर्तन प्रभावे स्मरण होइबे, जैसा कीर्तन होगा वैसे ही उनका चिंतन होगा, इसलिए गान का यहाँ पर, कीर्तन का यहाँ पर प्रधानता दी गई है। स्मरण तु गाने दर्शने अपि सर्वत्र स्वतः एव अनुसूत इति पार्थक्य, यहां पर गान होगा उसके साथ में स्मरण भी अनुसूत रहेगा, जैसा गान होगा वैसे, जैसे गुरुदेव का गान हो रहा है, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये जैसे, उस समय उसका हृदय गुरु जी के साथ में एक होकर के वैसा ही चिंतन मनन करेगा, इसलिए कृष्ण के विषय में भी ऐसे। कोई कोई स्मरण को श्रेष्ठ बतलाते हैं, सनातन गोस्वामी बार बार कहते हैं कि ये संकीर्तन ही प्रधान है, स्मरण के प्रभाव से, कीर्तन के प्रभाव से, कीर्तन के माध्यम से स्मरण उसके अंदर में रहता है, यदि स्मरण नहीं करेगा तो वैसा कीर्तन नहीं होगा। किनके लिए, जो ऐसे कुछ ऊपर मध्यम अधिकारी से ऊपर उठ रहे हैं उनके लिए। हम लोगों का कीर्तन होने पर भी कृष्ण के साथ में संबंध एकतान हृदय नहीं मिलता, दर्शक की तरफ में रहता है, बाबा लोग कह रहे हैं कि नहीं, उधर में चला जाता है और उनका उसमें लग जाता है। और स्मरण के प्रभाव से स्वतः ही कृष्ण दूर रहने पर भी निकट आ जाते हैं, स्फूर्ति उस समय होती है। अर्थात एक शकलर मध्य किसी में पार्थक्य नहीं है, एक के द्वारा दूसरा दूसरे का पोषक होता है। कीर्तन के द्वारा स्मरण का पोषक होता है, स्मरण के द्वारा कीर्तन का पोषक होता है। इसलिए ये ब्रजांगना ही धन्य है, किंतु हम लोगों के लिए ऐसा कीर्तन करना संभव पर नहीं है। ये यहाँ की मथुरा की रमणीया ऐसी बतला रही है, हा कष्ट हमें धिक्कार है, ऐसा हम न तो कीर्तन कर सकती हैं न स्मरण कर सकती हैं। इतना कहने के बाद में श्रील परीक्षित महाराज अपनी मैया को बतला रहे हैं, या परीक्षित महाराज की मैया ने प्रश्न होगा किया होगा, अच्छे मिलन में कैसे उनके भाव होते हैं जरा ये तो बतलाने का कष्ट करें, मिलन में उनके कैसे भाव होते हैं। या सनातन गोस्वामी इस चीज को प्रकट कर रहे हैं कि मिलन में पहले बतलाया मिलन का, इसके बाद में बतलाया विरह में, अब एक उदाहरण के साथ में बतला रहे हैं ये कैसे उनकी मिलन में इन गोपियों का कीर्तन और उनके मिलन में कैसे कैसे जो भाव होते हैं इसको वो बतला रहे हैं। प्रातः ब्रजात ब्रजत आविशतस्य सायं गोभी समं क्रणयतो अस्य निशम्य वेणुं निर्गत तूर्णमबला पतिभूरि पुण्या पश्यन्ति सस्मितं मुखं सदयावलोकम्। यही बतला रही है कौन, वही वहां की रमणीया कैसे बतला रही है अपने भाव नेत्रों से उसे देख करके हृदय में उपलब्धि करके बतला रही है, अथवा वहां पर जाने वाली फल विक्रयणी और दूसरों के मुख से जो उनकी लीलाएं सुनी हैं इस तरह से इसको बतला रही है। या नारद ऋषि की कृपा से उपदेश से व्यास जी ने कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं को ध्यान में देखा, समाधि में देखा। ऐसे साधक भजन के प्रभाव से करते 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 वो कृष्ण की लीलाओं का साक्षात दर्शन करेगा, किंतु है स्फूर्ति। वेणुवादन करते करते कृष्ण सखाओं के साथ प्रातः काल में ब्रज से वन में गमन करते हैं। यशोदा मैया बड़े लाड़ प्यार से उन्हें सजाती हैं, उन्हें खिलाती हैं। ब्राह्मण लोग मुहूर्त देखते हैं, मुहूर्त बीतने पर भी यशोदा मैया अपने लाड़ प्यार से उनको वंचित करके और वन में नहीं भेजना चाहती। जब वो आगे चलते हैं तो उनके पीछे पीछे गैया जैसी बछड़े के पीछे चलती है वैसे वो चलने लगते हैं। कुछ दूर जाने पर उनको मना करते हैं, नंद बाबा भी आगे पड़ चलने लगते हैं। जितनी गोपियां हैं सब उनके साथ में, जितनी माताएं हैं सब उनके साथ में चलने लगती हैं। आसपास झरोखे से जंगले से अट्टालिकाओं के ऊपर से कुंजों के भीतर से गोपियां उनका उनको दर्शन करती हैं। फिर सायंकाल में जब वो वन से जब आते हैं तो वेणु बजाते हुए आगमन करते हैं। उस समय जाते समय आते समय समस्त गोपियां उनके पथ पर खड़ी रहती हैं। उस समय वेणु गीत के श्रवण से अपने अपने घरों से वे अबलाएं निकल करके आती हैं। अबला कहने का क्या प्रयोजन है ये भी बतलाएंगे। वे प्रचुर सौभाग्यवती हैं, भूरी पुण्यवती, भूरी पुण्य। अबलागण अबला को भूरी पुण्य बतला रहे हैं, इसका भी कोई विशेष कारण है। उनकी सदैव दृष्टि के साथ मंद मंद मुस्कान के साथ में उनके श्री मुखारविंद को गोपियां ये दर्शन करती हैं। इसलिए हम लोग तो ऐसा दर्शन नहीं कर सकते, इसलिए हम अधन्य हैं और वो धन्य है। इस रूप से मथुरा की रमणीया मथुरा में जब कृष्ण प्रवेश करते हैं और रंगशाला में उपस्थित होते हैं, चारुमास्टी के साथ में जब युद्ध होता है, उस समय में एक सखियों से दूसरी सखियों के साथ में वे प्रेमालाप करते हैं। प्रेमालाप परस्पर वो करती हैं कृष्ण के संबंध स्वच्छंद रूप से। उनमें कोई पूर्व महिला यहाँ की रमणी बतला रही है, ओहो दुष्ट कंस के वध के पश्चात, अभी तो वध नहीं किया है किंतु वध जब कर लेंगे तो हो सकता है कि कृष्ण यहां रह जाएं, बलदेव जी यहीं रह जाएं, तरने से क्या होगा, रहने पर हो सकता है कि हम लोग भी उनका दर्शन करें, उस समय में कोई बाधा नहीं रहेगी दुष्ट कंस का और स्वच्छंद गति से हम कृष्ण का मुखारविंद देख सकते हैं। अभी कृष्ण का मुखारविंद कैसा है, हंस रहे, मुस्कुरा रहे, अभी युद्ध करने के समय में नहीं, अभी तो रोष से भरे पड़े, किंतु जब कंस मारा जाएगा और हो सकता है कि उस समय अपने माता पिता के पास में यहीं पर रह जाए क्योंकि उन्हीं के बेटे हैं। कौन कह रहा है, ये रमणियां जानती हैं कि ये वसुदेव के पुत्र हैं, उनकी दृढ़ धारणा है और ब्रजवासियों की ये दृढ़ धारणा है कि कृष्ण हमारे यशोदानंदन है, इसलिए इनकी धारणा ऐसी हो रही है। हो सकता है कि कंस मारा जाए, उस समय में कोई बाधा विघ्न नहीं रहेगी, तो अपने मैया बाप के साथ में मथुरा में ही रहेंगे, उस समय तो हम लोग स्वच्छंद रूप से इनका दर्शन करेंगे, उस समय कृष्ण मुस्कुराते हुए हमसे बातचीत करेंगे, दयापूर्वक हमारे तरफ में देखेंगे भी, ऐसा हो सकता है। होने से भी हम लोग भी कीर्तन के द्वारा उनको बुलाएं, ऐसा भी हो सकता है। कैसे, जैसे क्या है, हासी यशोदानंद कृष्ण गोविंद हरे नंद,
हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर हा श्री यशोदा तनय प्रसीदा हा श्री हा श्री यशोदा तनय प्रसीदा हा श्री श्रीवल्लभी जीवन राधिकेश श्रीवल्लभ।
ये ब्रज के लोग कहेंगे, मथुरा के लोग नहीं कर सकते, वो क्या कर सकते हैं अधिक से अधिक, हे नाथ श्री कृष्ण, हाँ हाँ
हे मुकुंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासु।
ब्रज का कोई भी पेड़ पौधा लता मनुष्य सखा ब्रजवासी कोई भी इस कीर्तन को नहीं करेगा, वासुदेव नहीं कहेगा, ये वासुदेव कर, ये कौन कीर्तन करेगा, यहाँ की रमणियां इस तरह से कहेंगी, जो जादवों की पत्नियां हैं वो यही कीर्तन करेंगी, क्या करेंगी,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण।
तो हम लोग ऐसा के समान प्रेमानंद से भरे प्रेमानंद से भर करके हासी जशोदा तनय प्रसिद्ध सी वल्लभी राधे के हम ये नहीं कर सकते कृष्ण और उस कृष्ण प्रसन्न हमारे ऊपर भी हो सकते हैं किंतु इतना प्रसन्न नहीं होंगे जितने कि गोपियों को आत्मसमर्पण करके उनके शरणागत हो जाते हैं ऐसा कभी संभव नहीं है। इसलिए सौभाग्य मिलेगा किंतु गोपियां जैसा गोपियां ही इसलिए कहते हैं भूर पुण्य पश्यन्ति सस्मित मुखम सदयावलोक इस अभिप्राय से वो कर रही है प्रातः ब्रजात ब्रजतः श्री कृष्ण प्रभात काल में। प्रभात काल में मैंने कब 9 बजे के करीब घर में जशोदा मैया के यहाँ से कलेवा करते हैं श्रीमती राधिका जी कहाँ से जावट से आती हैं अपनी ललिता इत्यादि सखियों के साथ और नंदगांव में ही रसोई बनाती हैं और कृष्णा उसको ग्रहण करके क्षणिक भर में विश्राम करके और गोपियों से थोड़ा सा किसी प्रकार से बहाना लेकर के मिल करके और फिर वहां से गोचारण के लिए निकलते हैं। इसलिए प्रातः ब्रजात ब्रजतः श्री कृष्ण प्रभात काल में वेणी वादन करते 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 गौओं के पीछे लाखों लाखों सखाओं और लाखों लाखों गायों को लेकर के एक वन से दूसरे वन में प्रवेश करते हैं। कैसे प्रवेश करते हैं ये वेणुगीत में बतलाया गया क्या है? इतना ही है अखनताम फलमिदम न परम विदाम सख्यु पशुन अनुविवेश यतो व्यस्य वक्त्रम ब्रजेश सुतो अनुवेन जुष्टम जैवा निपीत अनुरक्त कटाक्ष उनके दोनों के जुगलों के कटाक्ष मोक्षण माने एक दूसरे को राधिका जी कुंजों में और ये जा रहे हैं उसमें परस्पर के करुणा पूर्वक स्मित हास्य के साथ में दूसरों का जो अवलोकन हो इसको जो देखा उसका जीवन धन्य है यही आंखों का चरम फल है आंख वालों का। उस समय में यहाँ पर वेणुनाथ श्रवण से झटती निज नहीं अपने अपने गृहों से निकल आती है। कौन निकल आती है? अबला। अबला क्यों? क्योंकि सास ससुर ननद पति का डर है पति के डर के मारे घर से नहीं निकल पाती इसलिए अबला है। अबला इसलिए जब कृष्ण की वेणुनाद को सुनती हैं तो धैर्य उनका धैर्य लज्जा और अपने इन गुरुजनों के प्रति जो डर इत्यादि होता है समझ जानी कहां बंसी ले लेती है और उस समय कोई शक्ति इनमें मालूम नहीं है बंसी की ध्वनि इनको एकदम पकड़ करके खींच करके कृष्ण के पास में ला जाती है इनका अपना कोई बल नहीं है। इसलिए जैसे असहाय व्यक्ति को खींच ले जाए कोई ऐसे बंसी ध्वनि इनको इन अबलाओं को इनका अपना बल तो कोई भी काम नहीं करता। यदि बल होता तो नहीं जाते धैर्य बल होता लज्जा का बल होता उन गुरुजनों के डर का बल होता कदापि नहीं क्या निकलती हैं अबला है ना कोई शक्ति नहीं वो बेणु बलात उनको ध्वनि उनको खींच करके कृष्ण के पास नहीं इसलिए अबला। इसलिए हो करके अबला पति पार्श्व में इनके सदैव दृष्टि और हास्य युक्त मुखमंडल दो चीजें समस्मित मुखम सदयावलोक कृष्ण गोचारण जाते समय में मंद मंद मुस्कान से भरी करुणा पूर्वक दृष्टि से करुणा की वर्षा माने झकझक पड़ती रहती है और उनके तरफ में देखते हैं किनके तरफ में गोपियों की तरफ में देखते हैं। ये गोपियां इतनी सौभाग्यवती हैं अपने पर भी जो उनका दर्शन करती हैं इसलिए महाभूरी पुण्यवती हैं, सौभाग्यवती हैं, अथवा स्वतंत्र ही ना शक्ति, जो अर्थ हमने बतलाया, इतनी अबला है, डर के मारे में घर में छिपी रहती, और सहिष्णु हैं, धैर्यवती हैं, लोग क्या कहेंगे इसलिए घर से नहीं निकलेंगी, किंतु बंसी उनको पकड़ करके अबला की भांति उनको, जैसे कि ये दुशासन द्रौपदी को खींच करके लाई, ऐसे ही खींच करके ला देती है, और ये देखती क्या है, कृष्ण हमारे तरफ में सदैव हो करके करुणापूर्वक देख रहे हैं और स्मित हास्य देख रहे हैं। कौन कौन कह रहा है गोप, ये यहाँ की नारियां, किंतु यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसके विपरीत। इसलिए गोपियों के सौभाग्य का वर्णन कर रही है, अपने दुर्भाग्य का वर्णन कर रही है, ये दोनों चीजें यहाँ पर नहीं है। उस समय कृष्ण की भंगी कैसी होती है, जब वन में जा रहे होते हैं, चरणों में रुपुन नुपुर की रुन झुनु शब्द होता है, और वो बंसी की ध्वनि से मिलकर के एक अपूर्व मनोहारी ध्वनि पैदा करती है, इतनी सुंदर रुन झुनु की आवाज, शब्द मधुर ध्वनि, कण्या तो अश्य निशम्य वेद, नुपुर का कणन और बंसी का ध्वनि दोनों मिलकर के एक अपूर्व माधुरी उसमें होती है, उसको जो सुनेगा वो मुग्ध हो जाएगा। पशु लोग भी अपने धर्मों को विपरीत कर देते हैं, जड़ चेतन बन जाता है, चेतन अचेतन बन जाता है, चलने वाला स्थिर हो जाता है, स्थिर व्यक्ति जैसे जमुना चलने वाली स्थिर हो जाती है, और स्थिर पेड़ पौधे झुक जाते हैं, रस टपकाने लगते हैं, आकाश से मेघ से वर्षा होने लगती है, जड़ चेतन और पक्षी जो बोलते हैं वो चुपचाप एक टक से कृष्ण की तरफ में देखने लग जाते हैं, गायें चलने वाली स्तब्ध हो जाती हैं, हिरणे स्तब्ध होकर के उनके पास में, जो डरने वाली है वो एकदम कृष्ण के पास में प्रणय की भिक्षा मांगने लगती है। तो गोपियां कहती हैं, कास्त्रियं ते कल्पदायत वेणुगीत सम्मोहिता आर्चरिता न चलेत त्रैलोक्यम त्रैलोक सौभगम इदं च निरुपस्वरूपम जद गो द्रुम द्विज मृगा उल्कान, पेड़ों में भी पुलक हो जाती है, और जिनको पुलक होना चाहिए वो स्थिर हो जाते हैं, नदियां बहने वाली वो स्थिर हो जाती हैं, उल्टी धारा बहने लगती है। तो हम स्त्रियां स्वभाव से ही कोमल, आपके बलसित ध्वनि और आपके रूप को देख करके आकर्षित होती है, इसमें हमारा दोष क्या है, यदि दोष है तो आपके इस रूप का, इस वेणु ध्वनि का दोष है। ये जो अवर्णनीय चीजें हैं गोपियों के लिए, ये सब सुलभ है सहज रूप में। यहां पर दो चीजें, कृपा और स्मित। सस्मित माने मंद मंद मुस्कान के साथ में, और सदयावलोकन माने कृपा, कृपा पूर्वक देखना, दोनों चीजें कृष्ण की स्वाभाविक ये ब्रज में हैं। और यहां पर इसके बदले में हो गया क्या, कृपा के बदले में यहां पर क्रोध, कृपा का उल्टा है ना, कृपा होती है, और एक अप्र कृपा माने क्रोध, स्मित मंद मंद हास, यहाँ पर रोष भरी दृष्टि किसके, चारुमस्तु के प्रति, ऐसे दांतों से होठों को दबाकर ऐसा कर रहे, काम मंद स्मित चला गया, और जो सस्मित मुखम उसके बदले में ऐसी दृष्टि आई, एकदम दांतों के तले डाया करके उसको, और कृपा जो थी उसके बदले में क्या हो गया, संहार की भावना, इसका संहार करें, ये हमको मारना चाहता है, इसलिए बर्फ से लड़ने लगे। इसलिए ये कह रहे हैं, यहाँ हम इन चीजों को देख रही है उसके विपरीत, और गोपियां कैसी भावना के द्वारा पहले बतला है, कहाँ उनकी भावना और कहाँ हमारा दुर्भाग्य और कहाँ उनका सौभाग्य, वही कृष्ण है किंतु हमारा दुर्भाग्य है, ये ऐसे कृष्ण के रूप को हम दर्शन नहीं, ये गोपियों के लिए संभव है, हम लोगों के लिए दोनों चीजें नहीं है। क्या क्रोध में कृष्ण हो तभी नहीं, लड़ रहे हैं तभी नहीं, और गोपियों जैसे कृष्ण की तो बात ही, हाँ कभी कभी कल्पना कर सकते हैं यदि सौभाग्य है तो, दोनों कुछ। इसलिए गोपियों यहां पर पुरुष स्त्रियों का बोलने का तात्पर्य यह है कि इस समय शत्रु का संहार करने के लिए संकल्प किए हुए बड़े रोष से और बड़े क्रोध से यहां देख रहे हैं, और गोपियों के क्या यहां क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वहां पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है। बड़े प्रेम के साथ में हंसते हुए बछड़ों और सखाओं के साथ में वन में चले जा रहे हैं और बिखेर रहे हैं अपनी मंद मुस्कान को और कृपा दृष्टि को। फिर कहते हैं सनातन गोस्वामी जी, हाँ ऐसा एक अर्थ तो हुआ, किंतु दूसरा भी अर्थ हो सकता है। दूसरा अर्थ क्या होगा? इस समय भी उनके मंद मुस्कान, मधुर मृदु मुस्कान और कृपा वलोकन तिरोहित नहीं हुआ है, अर्थात तो उस समय भी युद्ध के समय भी जब चरण मुष्ट के सर से जब देखते हैं तो उधर तो ये हो जाती है, और जहां दूसरे तरफ में अपने सखाओं की तरफ में देखते हैं तो क्या होता है? मंद मुस्कान और इनके प्रति कैसा होगा? इनके प्रति क्रोध भरी दृष्टि नजर करेंगे नहीं कर। नंद बाबा भी बैठे हैं, वसुदेव जी भी बैठे हैं, देवकी भी बैठी है, तो उनके तरफ में क्या करेंगे? बालों को उचित मंद मुस्कान, किंतु वैसा नहीं जैसा ब्रज में। ब्रज में तो एक दूसरी प्रकार का भाव है, इसलिए इनका तिरोहित नहीं होगा, बल्कि ऐश्वर्य से। यहां पर ऐश्वर्य क्या है? रोष और संहार की बुद्धि। जब भक्तों की तरफ में दृष्टि करते हैं तो वैसा हो जाता है, किंतु उतना नहीं जितना कि ब्रज में ब्रज बनताओं के प्रति होता है। इसलिए गोपियों की प्रशंसा और अपने दुर्भाग्य का ये वर्णन करते हैं, हाय हाय कहती हैं, अथवा इनके साथ में कृष्ण का क्या संबंध है? क्या संबंध है गोपियों जैसा संबंध है? उपपत्ति का भाव रख सकती हैं? संभव पर नहीं हो सकता। इसलिए अपने संबंधों को देख करके, हाय हमारे पति यदि सुन लिया तो गोपियों को तुम्हारी हाई है, क्योंकि वो वैसे ही जाती है, किंतु हमारे जादव में यदि देख लेगा कोई हमारा पति ससुर सास, एक सेकंड के लिए नहीं, या तो गर्दन पर पड़ेगी तलवार और नहीं तो घर से निकाल देंगे एक क्षण के लिए, चाहे वो कृष्ण स्वयं बलदेव जी भी क्यों न हो। यहाँ मथुरा में नहीं, यहाँ पर मर्यादा है, उस मर्यादा का उल्लंघन करना संभव नहीं। और ब्रज में वो प्रेम भूमि है, इसलिए तादृश माधुर्य मंडित श्री मुखमंडल दर्शन इस ब्रज में, इस मथुरा में असंभव है। कृष्ण हमसे वैसे स्नेह की दृष्टि से नहीं देखेंगे, ये तुम हमारी प्रियतमा हो, यहाँ पर क्या देखेंगे? ये हमारी जेठानी है, हमारी भाभी है, हमारी भाई की पत्नी है, मर्यादा पूर्वक देखेंगे, कभी उस रूप में नहीं देख सकते। और वहां पर उनकी दृष्टि उन्मुक्त रूप से माधुर्य मंडित और परकीय भाव से उनके तरफ में देखेंगे। इनके प्रति परकीय की भावना संभव पर नहीं है, या तो मथुरा में या द्वारका में संभव नहीं। यदि कहो श्री कृष्ण ब्रज से वन में गमन करते हैं, उनके विच्छेद संबंध में क्या उनके दर्शन में भी ये बड़े पुण्यवती हैं? उस समय कितनी रोती होंगी? जिसके लिए जितना सुख है मिलन में, उसके लिए उतना ही दुख होगा विरह में। उस समय इनकी क्या स्थिति होगी? उस समय तो बड़ी हाय हाय करती होंगी। कहे हाँ करती तो हैं, उसी के लिए कहते हैं। कृष्ण के चले जाने पर वो सारी दिन माल्य ग्रंथन और कृष्ण के लिए ये बनाना और दलों का दल अपने स्वजातीय भाव में रह करके कृष्ण के वनगमन और वहां गोचारण में क्या क्या स्थिति होती है, वेणुवाद वेणु गीत में जो कहा गया, ऐसी भावना में तन में रहती है। दुख की खेद उगती उन समय होती है। यदि हम हिरण होकर के जन्म लेती, हिरणों के समान स्वच्छंद गति से कृष्ण के एकदम निकट में जाकर के उनको प्रणय की दृष्टि से देखती, गायों का जो सौभाग्य है मुख में घास का लेकर के कवल भी उसे न तो खा पाती है और न निगल पाती है, ऐसे ही कान खड़े करके कृष्ण के बंसी की तरफ में खड़ी हो जाती है। उनके बछड़ों की तो देखो और भी दूध उनके गले में अटका, न बाहर आता है न भीतर, एकदम एक भावना से आंख को बंद करके आंसू टपक रहे हैं और सुन रहे हैं, हम बछड़े होकर के जन्म ले लिए। इस तरह से वो गोपियां का हम लोगों के लिए ऐसा संभव है। तो फिर वो पुण्यवती कैसे हुई? पुण्यवती इसलिए दिवा का विरह जो भाव है सायंकाल में आविशतश्च सायं कृष्णाबाय, दूर बहुत दूर से सभी प्रतीक्षा कर रही हैं जे गायों के खुर से उठी हुई धूल कब दिखाई पड़ेगी। 3 बजे से ही दिन के मध्याह्न के बाद ही अपराह्न से देखने में हठात देखा बहुत दूर से आकाश मंडल धूल से परिव्याप्त हो गया और उसमें से गायों का हंबारा और मधुर बंसी की आवाज भी सुनाई पड़ने लग गई है। इस तरह से घर से निकल पड़ी। उस समय किसी के मना करने पर भी वो नहीं मानेंगी, घर से निकल पड़ी। उसी के लिए बोलते हैं आविशतश्च सायं। कृष्ण इस प्रकार से गोपों के साथ में गायों के साथ में जबकि शाम को आते हैं उस समय में पुनः ईशत हास्य और कृपावलोकन के द्वारा उनके तरफ में देखते हैं, उनका सारा दुख कितना बच गया 7:05 दूर हो जाता है। किंतु हमारे लिए क्या है? ऐसा दर्शन कभी भी संभव नहीं हो सकता है। एक तो उन्मुक्त कृष्ण का दर्शन और कृपावलोकन नहीं मिल सकता, यदि होगा भी तो हम लज्जा धैर्य इत्यादि को जलांजलि नहीं दे सकते। हम अबला नहीं है जो उनके रूप दर्शन से आकृष्ट होकर के सबको जलांजलि देकर के कृष्ण के चरणों में पहुंचे, इसलिए हमारे लिए संभव पर नहीं है। इसलिए ये गोपियां ही पुण्यवती हैं, महासौभाग्यवती हैं। आज यही तक रहे वंचा कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।